अनुभूतियां आप लोग ने इस तीन दिन कई सारे ऑफिसर से आपने सुने हैं। आज हमारे बीच है कनल विकास शर्मा, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। कनल विकास शर्मा जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी 99 में इनका कमीशन 15 पंजाब में हुआ और 2015 से ये ज्ञान में है। इन्होंने एक पंजाब रेजिमेंट जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरिया में कमांड किया, वहीं पर इन्होंने फिर दोबारा 2020 में एक होम इन हर्द बटालियन, फिर दोबारा रजौरी में कमांड की। अभी इनकी पोस्टिंग एज अ डिप्टी कमांडर सिकंदराबाद आई है। ये 2015 से ज्ञान में चल रहे हैं और परमात्मा के बहुत प्यारे बच्चे हैं। इनका जो एक फौजी डिसिप्लिन है, वैसे ही इनका हमारे ज्ञान में भी एक डिसिप्लिन है। सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के ये प्रोग्राम कराते रहते हैं, इनकी वाइफ और इनके बच्चे सब ज्ञान में चलते हैं। तो ये आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे और किस तरह से ये ज्ञान में आए, ज्ञान में आने के बाद में क्या क्या इन्होंने अनुभूति की, कैसे इन्होंने अपने आप को चेंज किया, ये सारा चीज हमें आप बताएंगे। जोरदार स्वागत कीजिए कर्नल विकास शर्मा।
थैंक यू भाई। ओम शांति। मोराल थोड़ा डाउन लग रहा है, लगता है खाने का टाइम हो गया है, तो एक बार फिर प्यार से जोर से बोलेंगे ओम शांति। शांति। भाई जी ने हमें एक चीज बताई थी कि हम एटलीस्ट जब तक यहां है तब तो वो सिक्के नहीं गिरने चाहिए, तो बहुतों के सिक्के मैं देख रहा हूं गिर गए हैं, लेकिन अभी एक नोट आपको मिलेंगे, फिर नोट यहां रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर सिक्के गिर रहे हैं तो नोट संभालना मुश्किल होगा। तो ये सिक्के कायम रहेंगे पक्का। जैसा भाई जी ने बताया, शुरुआत कैसे हुई मैं एक संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा कि 2014 में मैं अपने नेक्स्ट रैंक कर्नल के लिए अप्रूव जब हुआ था, इस लौकिक शरीर का जो रैंक हम बोलते हैं, तो उस समय 6 दिन रह गए थे जब मैंने कमांड को टेक ओवर करना था, एक कमांडिंग ऑफिसर यूनिट का। तो 6 दिन पहले मेरे साथ एक हादसा हुआ जिसमें एक ब्लास्ट इंजरी हुई है, जिसके कारण मेरे दोनों पैरों में भी रॉड्स दोनों टांगों में डली हुई हैं और एक आंख में मेरे स्प्लिंटर है। तो जब ये हादसा हुआ तब तक मैं ज्ञान में नहीं था, तो हमने हर कोई जगह होती है ना, जैसे गुरुद्वारे में मत्था टेक, किसी ने बोला ये बाबा है, ये चमत्कारी बाबा है, उनके दर पे पहुंच गए, तो कहीं बोला यहां चले जाओ यहां चले जाओ, तो हर जगह दर दर भटकते रहे। तो मैं तो खैर हॉस्पिटल में था, लेकिन जो हमारी वाइफ है, तो होता ही है जब कोई परिवार का होता तो दूसरा परिवार का सदस्य हर जगह हर चौखट जो बताई जाती है वो एंडेवर होता है कि वहां जाए शायद चमत्कार हो जाएगा। तो एक दिन ऐसे ही उस टाइम मुझे पलटन में रखा गया था ताकि जब हॉस्पिटल से निकला कि जब तक ये स्टेबलाइज नहीं होते तो अपनी यूनिट में रहिए और फिर कमांड का बाद में देखेंगे। तो वहां एक बोर्ड लगा हुआ था ब्रह्मा कुमारी सेंटर फिरोजपुर कैंट में, तो मेरे युगल सबसे पहले गए और गए तो इनको बड़ा अच्छा लगा और इन्होंने 7 डेज कोर्स किया। और वाइफ आई तो मैं उस टाइम क्रचेज में चलता था, उन्होंने बोला कि चलो एक दिन तुम भी चलो, तो हड़बड़ाहट सी होती कि एक तो खिजा होता है मन, जैसे भाई जी ने बिश भाई जी ने बताया कि इतने लक्ष्य के नजदीक आके जो आपने ध्याय होता है कि मैं ये बनूंगा ये मिलेगा और एकदम आपसे वो छिनता नजर आए, तो बहुत हड़बड़ाहट सी होती है मन में, बेचैनी और किसी पे विश्वास नहीं रहता है। तो मैं नहीं तुम जाओ तुम करते रहो मैं ठीक हूं। तो शिवरात्रि के दिन 2015 में मेरे को सेंटर से इनविटेशन आया कि शिवरात्रि के दिन आप आइए, तो आई थिंक वो मेरा दूसरा जन्म था। तो जब शिवरात्रि में मैं वहां गया तो मैंने जो देखा तो कुछ मैं भी नहीं समझ पाया कि हुआ क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर 7 दिन का कोर्स किया और फिर बाबा की शरण में मैंने बोला कि बाबा आप जो भी है आपने कमांड करानी है, आपने चलाना है, जैसे इस बच्चे को चलाओगे ये बच्चा चलेगा। तो जो भाई जी ने एक स्टोरी सुनाई थी ना कि एक टहनी से लटका रहा बच्चा, पर वो कि मैं छोड़ूं टहनी या नहीं छोड़ूं, तो मेरे भी वो एक विश्वास बाबा पे था कि जैसे आपने चलाना है जहां आपने करना है। तो इससे पहले मैं जा रहा था राष्ट्रीय राइफल्स की कमांड करने और वो श्रीनगर में थी जब ये हादसा हुआ था, और जब मुझे बाद में कमांड का ऑफर, जब मैं थोड़ा ठीक हो गया तो 2016 में मुझे कमांड का ऑफर आया अखनूर सेक्टर में अपनी ही यूनिट, तो अगर हम वो कोरिलेट करें तो ये बाबा, मैंने उस टाइम से मैंने बोला बाबा जब आपने इतना किया तो अपना घर अपने घर में रखो और अपने पास रखो। तो वो परिस्थितियां स्थितियां ऐसी बनती गई कि मुझे मेरी ही यूनिट जिसमें मैं कमीशन होके और जिस सेक्टर में मैंने कमीशन लिया था अखनूर सेक्टर में, उसी सेक्टर में मुझे कमांड करने का मौका मिला। तो उससे फायदा क्या हुआ कि एक तो मैं बचपन में जिन गलियों में घूमा था, जिन धाराओं में मैंने पूरी पेट्रोलिंग एम्बुल जहां लगाए थे वहीं मैं कमांड करने गया, तो मुझे उस जगह का, अगर नींद में भी सोता जागता तो मुझे एक एक जगह एक एक चीजें आती, कहां से मुश्किलें आनी है, कहां से टेररिस्ट ने आना है और कहां से क्या आना है। तो जब बाबा का बच्चा बना तो मैं आपको ये दो तीन इंसिडेंट्स बताना चाहूंगा एज कमांडिंग ऑफिसर जो मेरे साथ हुए, और इंस्पिरेशनल अगर आप सोचें कि कुछ है शक्ति तो है, माने तो आप सब अनुभव करेंगे, नहीं माने तो कुछ भी अनुभव नहीं होगा। तो एक टाइम था जब काफी फायरिंग उस टाइम खुली हुई थी, जब ये बालाकोट वाला इंसिडेंट हुआ था तो काफी फायरिंग खुल गई थी। तो हमारा सेक्टर जो आम शांत रहता तो हमारे भी काफी फायर होती थी, और हमारा पैरेलल था कि मतलब जो हम देख पाते थे वही वो हमारी मूवमेंट देख पाता था, तो काफी ज्यादा फायरिंग होती रहती थी और काफी फायर हुआ। तो मेरी एक छोटी सी पोस्ट थी जो कि 80x50 मीटर की पोस्ट थी, सेंसिटिव पोस्ट थी और 50 मीटर के डिफरेंस पे थी, 80 मीटर प्रिसाइजली दोनों की बाउंड्रीज थी, उसका बंकर्स की लाइनिंग और हमारे बंकर्स की लाइनिंग, और कॉम्पैक्ट पोस्ट और हमारे पास तकरीबन 20 के जवान वहां थे। तो जैसे होता है कि हर एक वीकलिंग को टारगेट, दुश्मन जो होता है वो आपके वीकलिंग को टारगेट करता है कि जहां हमें थोड़ी चोट लगेगी तो उसको वो टारगेट करेगा ताकि हम कहीं किसी दूसरे सेक्टर में अगर हावी हो रहे हैं तो वो हम चुप हो जाएं। तो वो समय था, उन्होंने शाम 4:30 जब ये नहाने धोने का टाइम और लंगर का थोड़ा एक्टिवेशन का टाइम होता है, उन्होंने फायरिंग शुरू की, और उस पोस्ट के अंदर 82 mm मोर्टर्स के जब हमने अगले दिन शेल्स गिने तो तकरीबन 125 जो शेल का वो पीछे का हिस्सा रह जाता है, 125 के करीब शेल अंदर थे और बाहर जो धसे थे वो हम गिन नहीं पाए। तो इतना उन्होंने टारगेट किया, तो जब उनके शेलिंग स्टार्ट हुई तो इतना तो ज्ञान हो गया कि अब ये बाकियों को छोड़ इसी को टारगेट कर रहे हैं और हो सकता है इसके साथ चढ़ते वो बैट, जो एक बॉर्डर एक्शन टीम उनकी करती है कि बैट ना कर दें। तो उस टाइम मेरी पोस्ट भी काफी डरे हुए थे, दो जेसीओ साहिबेन थे वो भी काफी डर गए हुए थे कि साहब अनकंट्रोलेबल, समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने फोन लाइन पे थी, और बोलते हैं ना कि मैंने डबल सिस्टम कर रखा था, फोन लाइन, मोबाइल और एक चोर फोन लाइन थी जो कि बीएसएनएल की हमने डला रखी थी चुपचाप, तो वो तीनों लाइनें एक्टिवेटेड थी कि एक गई दूसरी गई एटलीस्ट तीसरी कुछ ना कुछ तो चलेगा। तो मैंने उनको बस यही कहा कि ठीक है, और मैं उस वक्त मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया जब ये शेलिंग शुरू हुई कि बाबा ये पोस्ट तुम्हारी, आप पोस्ट के कमांडर हो, मुझे नहीं पता, वो 20 बच्चे आपके हैं, आप ही ने उनका ध्यान रखना है, मुझे कुछ पता नहीं है। और साथ में मेरे ही जिसको कहते ना कि ज्ञान आता है कि मतलब जब मैंने मेडिटेशन कर रहा तो मेरे ऐसे ही दिमाग में आया, हमारे पीछे हमारी मोटर प्लेटून थी, तो नॉर्मली आप 6 एक जगह रखते हो या 3 में स्प्लिट करके 2 सेक्शन बनाते हैं, तो पता नहीं कहां से वो एक आवाज आई, मैंने क्या किया कि 6 जगहों पे सिंगल सिंगल ट्यूब रख दी अपने फ्रंट पे, 6 जगह पे रख दी, और मैंने बोला कि जब एक मारता है तो दूसरा थोड़ा बकफा दो, आपस में टाइप रखो कि एक टाइम में एक फायर करे और दो दो मिनट के बकफे के बाद 6 मोटर 6 जगह से फायर होने चाहिए। तो उसका क्या हुआ कि एक जो मैसेज उनको गया कि ये इनके पास एक नहीं 6 जगह से मोटर फायर कर रहे हैं, तो इनके पास 6 सेक्शन मतलब इनके पास 12 या 12 से ज्यादा ट्यूब्स हैं जो ये फायर कर रहे हैं। और दूसरा, मेडिटेशन के बाद जब सुबह हमने देखा मेरे उस पोस्ट के अंदर, जब हम सुबह गए हालांकि फोन पे कम्युनिकेट होता रहा, किसी एक जवान को एक सिंगल स्क्रैच भी, अगर बोलते हैं ना मोटर का स्प्लिंटर भी ऐसे आया कि किसी के बेड के बगल में गिर गया है, किसी की दीवार में आके वो जो सैंडबैग्स बैग्स लगाए होते हैं उसमें लगा हुआ है, या उनके कपड़े फट गए हुए थे जो लटके हुए थे अंदर बंकर की एक साइड, तो इस तरह से आया कि जिस साइड को स्प्लिंटर गया उस तरफ कोई जवान था ही नहीं। तो ये मैं एक चमत्कार, या बोलिए आप बाबा ने अपने बच्चों को कि जिस साइड स्प्लिंटर आ रहे उससे हटा के दूसरी साइड रख दिया था, और जिस साइड नुकसान हुआ वो सिर्फ स्थूल चीजों का नुकसान हुआ है, कपड़े, ट्रंक्स या आपके बक्स, सैंड बैग जो इसका, और बाकी जवानों को एक खरौंच भी नहीं आई। तो ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था जब बाबा की गोद में बैठ के जो मैंने देखा। इसी तरह उसके बाद हमारी दो पोस्ट थी, और बीच में क्या हुआ, इसी फायरिंग के चलते हमारे बगल में गोरखा रेजिमेंट थी, तो एक गोरखा जवान के काफी घायल हो गया और काफी उसे ब्लड निकल गया था। तो मेरी प्योर सरदार की पलटन थी, खालसा पलटन हम बोलते हैं उसको, तो जोश वैसे ही भरा रहता है। तो और ये भी एक मैं आपको बता दूं कि जब मैंने कमांड टेक ओवर की तो ज्ञान में चलने से पहले ही नॉनवेज तो खैर नहीं खाता था, बट वो ड्रिंक जबरदस्ती वो देते थे कि नहीं पकड़ लो पकड़ लो, लेकिन ज्ञान चलने के बाद मैंने वो ड्रिंक भी करना छोड़ दिया कि ठीक है पानी दो, और उसके बाद वो समझ गए कि इसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता है, ये पानी पकड़ के रखे जाता, आप डालते चलो वो वैसे रख देता था, फिर एक पानी का गिलास पकड़ लेता था। तो मैंने ज्ञान के आने के बाद मतलब प्योर वेजिटेरियन और सात्विक डाइट जो थी वो फॉलो की हुई थी। तो मुझे देखते हुए धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्मेशन आई कि वो जेसीओस मेस में जहां हमेशा लिकर और नॉनवेज बनता था, वहां पनीर और नींबू पानी, सोडा और ये लाइम कॉर्डियल जूस और ये शुरू हो गया। मतलब जो हार्ड ड्रिंकर से, या प्रैक्टिकली मैंने देखा है कितने हार्ड ड्रिंकर से जो मतलब दो टाइम पीने वाले थे, वो 15-15 दिन पूछने पे भी पता लगा कि नाम होते थे कि आज नैब साहब ने नहीं पिया, नहीं साहब नैब साहब तो 15 दिन हो गए, अभी तो देखा था कि नहीं, वो बोतल वैसे की वैसे पड़ी है उनके बगल में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि मैंने उनको वाइब्रेशंस देना ये शुरू किया कि बाबा जो ये गंदे व्यसन है इनसे इस पलटन को दूर करो। तो जिस पलटन में मेन हमारी जो प्रॉफिट सीएसडी का लिकर से होता था वो टूट के ग्रोसरी और बाकी चीजों पे आ गया था। तो ये सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन कमांड में, सिर्फ एक दो साल की कमांड में मैंने ये देखी। तो जो मैं आपको एक बात सुना रहा था गोरखा रेजिमेंट वाली, तो गोरखों की उनकी कैजुअलिटी पर जो है, जो ये बख्तरबंद गाड़ी आपको पता होगा सारे फोर्सेस वाले हैं, तो उनका कैस्पर अटक गया था और वो ना ड्राइवर निकल पा रहा था और वो कैजुअलिटी नीचे थी, ना वो कैस्पर पे चढ़ पा रही थी। तो हमारी डिस्टेंस था 150 मीटर और रास्ता भी ऐसा था कि जिप्सी जा सकती थी लेकिन कैस्पर नहीं जा सकता था। तो मैंने अगेन वही, मैंने अपने दो तीन मेरे थे जो मैंने बोला कि भैया कौन है वॉलेंटियर जो बोलता है कि जो भी होगा देखा जाएगा। तो तीन या चार वॉलेंटियर जिसमें से एक ड्राइवर था, तो उन्होंने हामी भरी। तो मैंने वही पोस्ट पे, दूसरी पोस्ट पे मैं था, मैंने बोला कि आप जाओ, बाकी कुछ मन में विश्वास आता है कि मैंने बोला कि कुछ भी नहीं होगा आपको। और फायरिंग मतलब ऐसा हुआ कि वो जैसे होता ना कि जैसे एक कवर फायर मिलता जा रहा है, वो चलते जा रहे हैं और फायर आपका पीछे पीछे होता जा रहा है। तो मेडिटेशन करते करते मैंने बोला आप चले जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और जैसे ये सूरज भाई ने बोला कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, और एक और हम सोमान लेते हैं कि आज से अभी से मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मेरे बन ये जो ट्रूप्स हैं इनके साथ, इनकी फैमिलीज के साथ सब कुछ बहुत उत्तम होगा, ये सब पूरे बाबा की शरण में प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो मैंने वो सोमान बोलना शुरू किया और वो तब तक बोलता गया जब तक वो सेफली उस कैजुअलिटी को उठा के कैस्पर के अंदर, और कैस्पर को स्टार्ट करके उसको वापस जब फायरिंग लाइन से पीछे ले आए। बोलता जा रहा हूं तो मेरा जो बड़ी था वो बोलता है साहब आप बड़बड़ाई जा रहे हो, आपको बताना था, वो निकल गई है कैजुअलिटी। तो ये प्रैक्टिकली एक एक्सपीरियंस मैंने खुद किया हुआ है कि इतनी शेलिंग में जब वो नहीं निकाल पा रहे थे हमारे तीन जवान, जाके वो कैस्पर भी स्टार्ट हो गया, वो कैजुअलिटी भी हमने वैक्यूएट की और 150 मीटर उस एरिया से भी चल के आए जो कि ओपन पैच था और शेलिंग हो रही थी। तो ये बाबा का ही प्रताप था और ये कुछ मेडिटेशन का इफेक्ट था कि कुछ ना होते हुए हमने वो कैजुअलिटी को इवैक्यूएट भी किया और वो जो जिसके इतनी ब्लीडिंग हो रखी थी वो इंसान दोबारा खड़ा होके, और आपको जानकर खुशी होगी वो खुद जब उसको बताया कि ऐसे बचा, जवानों ने हंसी मजाक करते हुए तेरे को तो ये बाबा बाबा करके बजा के, तो वो आज बाबा का बच्चा है। सिलीगुड़ी में एक जगह है, अपना डामडिम ऊपर को जाते हैं वहां पर उसका घर है गोरखा रेजिमेंट, और तमांग करके उनका वो है सरनेम। तो वो आज कहते हैं कि सर उस दिन से मैं भी बाबा का बच्चा बन गया हूं। तो ये कई ट्रांसफॉर्मेशन हैं जो होते हुए देखी। जब इसके बाद सेवा का मौका मुझे सेकंड कमांड रजौरी में मिली, तो रजौरी में ह्यूमन हर्थ बटालियन थी। ह्यूमन हर्थ होते हैं जो वहीं के लोकल्स आप एम्प्लॉय करते हैं, तो मेजॉरिटी वहां पर मुस्लिम्स ट्रूप से, तो अब थोड़ा सा वो झिझक रहती है, क्योंकि कई जगह जैसे भाई जी ने कल बताया कि इनके पर भी वो एक लांछन लगा कि भैया धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो मैं भी जब हम अब ओम का उच्चारण, तो वो मुस्लिम ट्रूप से वो ओम का उच्चारण की सर बाकी सब ठीक है, पर ये ओम का उच्चारण ये मतलब थोड़ा सा उसमें उन्होंने बोला कि सर ये हमें मंजूर नहीं है, ये नहीं है। और ऑपरेशन में हम निकलते थे तो सकाश देता था, ये देता था, पर वो नहीं थे। तो उस टाइम जब कोरोना थोड़ा चलने लगा तो सब बैरक्स में कन्फाइंड हो गए। तो आएंगे गिरीश भाई जी, आपकी क्लास लेंगे तो आप भी वो अनुभव करेंगे। तो मैंने गिरीश भाई जी से रिक्वेस्ट की कि भाई जी काम है नहीं अभी, हम कोरोना के कारण सिर्फ बैरक्स के अंदर हैं। तो हमने वो क्लासेस शुरू की कि भाई जी एक है कि आप जैसे शुरुआत करते हैं ओम शांति, तो ओम शांति करके मत करना और कुछ आप देख के क्लास शुरू करिए, ताकि इनको कुछ ज्ञान, कुछ बातें इनके जहन में जाएं, इनके दिमाग में जाएं कि कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो गिरीश भाई जी ने जैसे होता है कि अपने वे से उन्होंने क्लासेस शुरू करी। तो हमने तकरीबन एक डेढ़ महीना गिरीश भाई जी की सवेरे मॉर्निंग में एक घंटे का हमने सेशन रखते थे हम, जब वो फ्री होते, कभी 6:30 से 7:30, कभी 7 से 8, जैसे उनका टाइमिंग सेट हुआ। तो ये मैंने भी थोड़ा जबरदस्ती की, एज अ सीओ भाई नहीं बैठोगे तुम सारे, चाहे मेरी तरफ से कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो, बट बैठोगे सुनोगे जरूर, क्योंकि कोई काम नहीं है, बाहर निकलना नहीं है कोरोना के कारण, तो बिजी कैसे रखूं तुमको, तो तुम बैठोगे सुनोगे। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं कि उनके अंदर खुद से, जब गिरीश भाई जी क्लास खत्म करते थे तो क्लास में से आवाज गूंजती थी ओम शांति भाई जी। तो क्लास खुद जो उन्होंने ये अनुभव किया, और क्लास से खुद उन्होंने, हमने नहीं बोला किसी ने, लेकिन खुद क्लास में एंड में ये बोलना शुरू किया, और जो हलाल के बिना मतलब नहीं रह पाते थे वो भी 50 से 60% जो लोग थे वो ट्रांसफॉर्म हो गए। अभी भी मेरे इन टच में हैं वो, अभी वो कहते कि सर सात्विक जीवन, और ये जो आपका, मेरे को बोलते थे कि घासफूस वाला जीवन है, बड़ा अच्छा घासफूस वाला जीवन है सर। तो आजकल हम हलाल से कहते हैं घासफूस पे ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। तो मैं उनको बोलता था कि अच्छा था घासफूस खाना, जो हरा हरा हो, सूखे वाला घासफूस मत खाना। तो ये जिंदगी के कुछ सत्य हैं, कुछ अनुभव हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, कि ये दो कमांड में मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन होती देखी है। मन में अगर आपके विश्वास है, कोई भी मुश्किल है ये आपके लिए सरल हो जाती है। जैसे भाई जी ने अभी कहा, सरल होके कुछ भी समाधान नहीं निकल रहा है, आपको एक मिड पाथ, अगर आप उस परम पिता पे विश्वास रखेंगे, आप उससे प्रश्न करके उसी से जवाब मांगेंगे कि हे प्रभु या हे भाई मैं फंस गया, आप मुझे निकालो, मुझे नहीं पता, मैं दलदल में फंस गया। तो जब मैं कमांड छोड़ रहा था तो मेरे साथ एक बहुत ही इंसिडेंट हुआ, और आज तक का मेरे साथ पहला इंसिडेंट है। मतलब हालांकि जब मैंने ज्ञान में नहीं था तो उससे पहले काफी इंसिडेंट हुए, जब आपके ऐसे खड़े और मिल्टन ने फायर किया और आपके कंधे से बगल से गोली निकली हुई है, तो ऐसे एक दो बार इंसिडेंट हुए, बट तब हमने परवाह नहीं की। लेकिन जमान छोड़ रहा था मैं रजौरी में, तो एक जवान ने एक जवान को गोली मार दी और फ्रेटरीसाइड का इंसिडेंट हुआ। बट इंसिडेंट देखिए ऐसा हुआ कि बैरक से निकल के सारे लोग खड़े थे, तो जो एक पॉजिटिव वे, और वो मेरे दिमाग में वो चीज एक आ रही थी, जैसे ना एक धुंधली सी तस्वीर आ रही थी पिछले दिन, कि वो कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, और बाकी खड़े हुए हैं। तो जब सवेरे वो कोरिलेट किया तो मेरे को जैसे किसी ने बोला कि चिंता मत कर, बाकी सेफ है, बाकी सेफ है, कुछ मतलब ऐसे धुंधला मेरे को कुछ ऐसे अनुभव सा हुआ। मॉर्निंग में 5:30 कॉल आया कि सर, आफ्ताब था जिसने अपने ये एक दूसरे इसको मार दिया था, इमरान को आफ्ताब ने गोली मार दी थी, तो उसके बगल में पूरी प्लाटून सवेरे जाने के लिए अपने एक्शंस के लिए तैयार थी। तो 20-22 लोग जो बाकी खड़े थे, उसने उनको कुछ नहीं किया, तो सिर्फ एक आफ्ताब था जिसने इमरान को मार दिया, सिर्फ एक था जो पर्टिकुलर हुआ था, और खुद उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। तो जब मेरे से जीओसी पूछते कि यार तू इतना मेरे को पीस ऑफ माइंड बताता रहता है, तू मेरे को इतना बोलता रहता है, तू मेरे को इतना कुछ ज्ञान देता रहता है, तो ये तेरा ज्ञान कहां था, तेरे ये फ्रेट्रिसाइड हो गया, तेरे को क्यों नहीं पता हुआ। तो मैं ना जीओसी को एक ठंडे दिमाग से मैंने बोला कि सर मैं विचलित नहीं हुआ ना इतना कोई, और जैसे होता ना कि प्रेशर, वो मेरे को कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि जो आपका कर्म है वो कर्म के अनुसार फल जो आपको मिलना है वो तो मिलेगा, और जो एक दाता ने एक साइकिल बनाया हुआ है वो साइकिल भी चलना है, उस साइकिल को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये अनुभव था या वो उस परमपिता पे विश्वास था, तो मैं इतना विचलित नहीं हुआ कि ठीक है जो अभी एक होनी थी वो हो चुकी है, लेकिन इसके बाद इसको डैमेज को कैसे कंट्रोल करना है उस पर हमें कार्य करना है। तो जीओसी ने आके काफी गुस्से में कि ये क्या हो गया, तेरा ज्ञान कहां गया, ये कहां गया। तो मैंने बोला कि सर जो आप ये देखिए कि दो लोगों का आपस में हुआ और 22 जो बते थे, अगर वो AK-47 इधर घुमा देता तो 22 लोगों की जान जाती, तो ये भी एक कोई सत रहा होगा, ये भी एक कोई शक्ति रही होगी कि उसने सिर्फ एक पे फोकस किया और अपने को किया, इन दोनों का आपस में कोई कार्मिक अकाउंट है जो इन दोनों ने आपस में सेटल किया, हालांकि सेटल करने का तरीका गलत था, लेकिन वो कोई एक कार्मिक कर्मों का अकाउंट था जो उन्होंने अपना सेटल किया और चले गए, और बाकियों के वो देखिए आपकी कोई शक्ति थी जिसने खड़े होकर बोला कि भैया अपना सेटल करो, बाकियों को इसमें मत लाओ। तो ये भी एक अनुभव होते हैं और ये भी एक शक्ति है जो आपको, नहीं तो उस वक्त आप विचलित भी हो सकते थे, आप कई कुछ हो सकते थे, आप अपना आपा भी खो देते थे, क्योंकि पहले मेरे में गुस्सा बहुत था, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था कि ये काम नहीं हुआ गुस्सा आ गया, ये टाइम पे नहीं पहुंचा गुस्सा आ गया। तो ये जो मेडिटेशन और ये जो भी आप दो दिनों से देख रहे हैं, ये क्रियाएं आपके अंदर इतनी शालीनता और बड़े से बड़ा आपको जो है ना जो सेटबैक्स बोले आप या ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ये परिस्थितियों को झेलने में आपकी बहुत मदद करते हैं। तो ज्यादा समय नहीं, क्योंकि आपका भी भोजन का समय हो रहा है, मैं इतना ही कहूंगा कि उस परम पिता पे विश्वास रखिए, आप उसके बच्चे हैं और वो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, जिस तरह आप अपने बच्चों का बुरा नहीं कर सकते, बच्चों का कभी बुरा नहीं होने देगा और वो हमेशा आपका हाथ पकड़े रखेगा, बस वो टहनी पे नहीं उस परम पिता पे विश्वास रखना और जो आवाज आए उसे फॉलो करते रहना।